لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اس سے پہلے کہ سورہ مبارکہ جمعہ کی اس لاسٹ آیت پر آج بات کمپلیٹ کی جائے، ایک مرتبہ پھر یہ یاد دلاتے ہوئے کہ آج کی رات عاشورے کی رات ہے، جو کل کی رات گزری تھی تاسوعا، قد حوصر فیہ الحسین، وہ دن جب حسین چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے، اور آج کی رات وہ آخری رات ہے کہ جب خاندان فاطمہ آباد ہے، کل کی رات جو آنے والی ہے شام غریبہ، اس طرح سے یہ خاندان اجڑے گا کہ پھر ظہور امام زمانہ تک دوبارہ آباد نہ ہو سکے گا. اور یہی ہمارا سبجیکٹ تھا 1434 ہجرہ کے اس پہلے عشرے کا، کربلا سے ظہور امام تک. آج کی رات ہم اور آپ بھی فیل کر رہے ہیں کہ یہ سال کی ایک عام یا نارمل رات نہیں، خود بخود کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، کھانے کی چیز سامنے آتی ہے دل بھی نہیں چاہتا اس کو استعمال کرنے کا، پانی سامنے آتا ہے دل بھی نہیں چاہتا اس پانی کو پینے کا. اور ہم اور آپ نہیں، اس وقت ساری کائنات غم کی ایک کیفیت میں. چنانچہ بہت سارے اعضا خانوں میں یا گھروں میں تبرکات پر خون کی سرخی بھی آپ کو نظر آنے لگے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ شب عاشور یا عاشور کے دن جب آپ کو یہ خون نظر آئے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ کسی قسم کے عذاب کی وارننگ ہے، نہیں، کائنات غم کرتی ہے. اور کہیں پر اگر خاک شفا ہو، چاہے بہت ہی مختصر مائنیوٹ مقدار میں، تو وہ خاک شفا تو یقیناً خون کی طرح سے سرخ ہو جائے گی. وہ زمین جس کی مٹی اللہ کا رسول ام سلمہ کو دے کے گیا تھا، اور 61 ہجری کے عاشورے میں شہر مدینے میں ام سلمہ کے حجرے میں یہ مٹی خون بن گئی. دنیا میں جہاں جہاں اگر آپ کے پاس کوئی تسبیح ہے جس میں ذرا سی بھی خاک شفا، اگر آپ کے پاس کوئی مہر یا سجدگاہ ہے جس میں ذرا سی بھی خاک شفا، وہ تو یقیناً سرخ ہوگی. لیکن اس کے علاوہ بھی کہیں علم، کہیں تابوت، کہیں گہوارہ، کہیں زری، اس لیے کہ ہر سال یہ کائنات حسین کا غم مناتی، اور اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں آتی ہیں حسین کے غم کی بھی، اور اس بات کی بھی کہ حسین کا پیغام پھیلانا. اور یہیں پہ ایک جملہ میں کہہ دوں، اور اس کے بعد جو میرا سبجیکٹ چل رہا ہے اس پہ بات شروع کی جائے. حسین کا غم، حسین کے غم کے حوالے سے ہر انسان کی دو ڈیوٹیز یا ریسپانسیبلٹیز، اور مسلمان ہو رسول کا کلمہ پڑھنے والا، تو یہ دو ڈیوٹیز یا ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. یہ وہی دو ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں جو کربلا کے واقعے کے جسٹ آفٹر حسین کی بہنوں نے، حسین کے گھر کی لیڈیز نے، حسین کے وارث سجاد نے انجام دی. دو ذمہ داری، ایک خود غم بناؤ، جہاں پر بھی ہو جس جگہ پر بھی ہو لوگوں کے ساتھ ہو تو غم مناؤ، اکیلے کسی غار میں یا جزیرے میں یا کسی جیل اور پریزن میں بیٹھے ہو تو غم بناؤ. یہ حسین کا ماتم ہے جو ہر ایک کو کرنا، اور ایک یہ ہے کہ حسین کے ماتم کو پھیلاؤ اور حسین کا یہ پیغام ہر ایک تک پہنچاؤ. چنانچہ یہ دو ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ہمارے یہاں دو طریقے، ایک ہے مجلس جس میں مرثیہ ہوتا ہے، جس میں نوحہ ہوتا ہے، جس کے اندر آریٹر یا ذاکر کی تقریر ہوتی ہے اور ہم کا بیان، اور ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں جلوس جو عام لوگوں کے سامنے حسین کا پیغام پہنچتا ہے. محفل اور رضا خانے میں صرف وہ آتے ہیں جو حسین کو اور حسین کے نانا کو مانتے ہیں، مگر حسین کا پیغام تو ہمیں گاندھی جیسے نان مسلم کو بھی پہنچانا ہے، تو اس کے لیے دوسرا طریقہ اسلام نے رکھا ہے جلوس. حسین کے گھر والے حسین کی صف عزا بھی بچھا رہے ہیں، چاہے کربلا کے جنگل میں ہو یا شام کے قید و خانے میں، اور لوگوں کے سامنے حسین کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں، چاہے بازاروں میں ہو یا درباروں میں. اب یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہو جائے گا، مگر حسین کا یہ غم اور حسین کا یہ میسج اس سارے انسانوں تک کیوں پہنچانا؟ اس لیے اس زمانے کے امام کے ذریعے سے اللہ کو جس مشن کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کا پارٹ اے ہے کربلا کا جہاد اور پارٹ بی ہے امام زمانہ کا ظہور. یہ دو چیزیں، اپیئرنس آف امام زمانہ یہ کنیکٹڈ ہے کربلا کے جہاد سے، اور اسی کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اور یہاں پہ رک کے ذرا سا میں اپنے سبجیکٹ کو چینج کرتا ہوں 5 منٹ، اور اس کے بعد پھر میں اپنے اسی سبجیکٹ پہ آ جاتا ہوں جو کل بہت ہی اہم اسٹیج پر پہنچ گیا تھا. اجو میں 5 منٹ کے لیے ذرا سا ڈائیورٹ ہو رہا ہوں، وہ بھی اصل میں میرے سبجیکٹ کا ایک بہت اہم پارٹ ہے، لیکن آج میرے پاس ٹائم نہیں کہ اسے میں کنیکٹ کروں اپنے مین سبجیکٹ سے. اور وہ یہ ہے کہ کربلا کا جہاد پارٹ اے، امام زمانہ کا جہاد پارٹ بی، ان بٹوین دین کی اور مسلمانوں کی ڈیوٹی اور ریسپانسیبلٹی امام نے اپنے نائب مرجع وقت پہ رکھی، اور جیسے جیسے ظہور کا زمانہ قریب آتا جائے گا ویسے ویسے مرجعیت کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوتا چلا جائے گا. مرجعیت اسلام کے پروٹیکشن اور ڈیفنس کے لیے ایک بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے جو معصومین نے اپنے زمانے میں بنایا، اور چونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر پورا ایک اشرا بھی پڑھا جا سکتا ہے جس کا میرے پاس ٹائم نہیں، تو میں روزانہ 5-5 منٹ، اور وہ 2 دن سے، اس کے کسی ایک پہلو کو واضح کرتا ہوں. یہاں پہ ایک ایسی بات میں آج بیان کروں کہ جو اپنی جگہ بالکل لاجیکل بات ہے اور بالکل صحیح بات ہے، اور عقل بھی اور اسلام بھی اس سے ایگری کرتا، اور وہ یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے ویسٹ کے ریکوائرمنٹس اور نیڈز نجف اور قم سے الگ ہیں، ہمیں اپنے علاقے اور اپنے ایریا کے لیے اپنا ایک لوکل مرجع چاہیے جو ہمارے مسائل کو سمجھ کے فتویٰ دے، میں نے کہا یہ بات بالکل صحیح. اگر کہ آج کی اس گلوبل ویلیج کی دنیا میں جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز تک एक छोटे से लैपटॉप के ऊपर पूरी कंपनी चला दी जाती। जो कम्युनिकेशन इतना फास्ट हुआ है उसके नतीजे में तो आज ये कंसेप्ट खत्म ही हो रहा है कि ईस्ट अलग है और वेस्ट अलग है। लेकिन फिर भी बेसिकली इस बात से इस्लाम एग्री करता, मगर इसका एक तरीका होता है। किसी भी गलती को रेक्टिफाई करने के दो तरीके, ए और बी। हमें बी को लेना चाहिए, हम बी नहीं लेते हैं क्योंकि जरा मुश्किल काम, हम ए लेते हैं। प्रॉब्लम यहां से शुरू हुआ। अब ये गलती हो जाए, आज की रात शब आशूर, कायनात रो रही है, आसमान से खून की बारिश हो रही है, खाके शिफा खून जाहिर कर रही, तस्बीह में खून आ रहा, अलम पे खून आ रहा, सिजदगाह में खून नजर आ रहा, और मैं किसी किस्म का जोक मजलिस में बयान करूं, जो 9 दिन तो मैंने बहुत सीरियस बात पढ़ी और आज ही, लेकिन मैं क्या करूं, इस वक्त एक ऐसे स्टेज पे मेरी गुफ्तगू पहुंच गई। मैं बस ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इसे ऐसे जोक न सुनिए। किसको भी अगर कहीं पे गलती हो रही या शॉर्ट कमिंग है तो उसका रेक्टिफाई करने के और गलती को ठीक करने के दो तरीके, ए और बी। अब इसकी एक एग्जाम्पल दी जाती है जो जोक बना के। मसलन पाकिस्तान, हमारे यहां एक आईडी कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड बनता है, या मसलन पासपोर्ट बनता है, और अगर कोई औरत है तो उसके साथ उसके हस्बैंड का नाम लिखा जाता। अब एक जोक बयान किया जाता है, मैं इसे इस वक्त बहुत ही सीरियस मिसाल बना के पेश कर रहा हूं। एक औरत पासपोर्ट ऑफिस गई और कहने लगी कि आपने ये पासपोर्ट के अंदर एक गलती कर दी, अरे क्या मिस्टेक हो गई, मेरे नाम के आगे लिखा है विडो ऑफ एबीसी, मसलन एक्स वाई जेड। मैं विडो नहीं हूं, मैं वाइफ हूं, मेरा शौहर जिंदा है। भाई प्रूफ क्या है, तुम्हारा शौहर जिंदा है का? ये जो मेरे बराबर में मेरे साथ आया, ये मेरा शौहर है, आप इसको ठीक करें। ये लिखा है विडो ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड, इसको कीजिए वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड, क्योंकि वो मेरा शौहर जिंदा। अब ये गलती ठीक करने के दो तरीके, ए वो पासपोर्ट ऑफिसर पासपोर्ट ले और उसकी जो विडो लिखा है उसको चेंज करके वाइफ कर दे, ये बी तरीका, इसको मैं बी कहता हूं, ये सही है, ये लॉजिकल। और ए क्या है, उसने कहा अच्छा ये गलती हो गई है, मैं इसको ठीक करता हूं। ये कह के उसने पिस्टल निकाला और उसके शौहर पे फायर कर दिया, शौहर मर गया, आप तो ठीक हो गया ना, आप तो आप विडो हो गई, आपके पासपोर्ट पे लिखा था विडो ऑफ एक्स वाई जेड, मैंने आपको विडो कर दिया। जोक है। और 9 मुहर्रम की रात को, 10 मुहर्रम की रात को मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं एक तरीका तो ये कि आपने उसे गोली मार के मार दिया, कहा कि आप देखिए गलती ठीक हो गई, ये ए तरीका। कौन इसको इख्तियार करेगा, बेवकूफी की बात, नॉनसेंस, जोक। और बी क्या है कि वाकई उसको ठीक करे। अब हमें यूरोप के लिए अलग मर्जी चाहिए, नॉर्थ अमेरिका के लिए अलग मर्जी चाहिए, ये अलग बात है कि इसका अगला स्टेज इससे भी खतरनाक है। नॉर्थ अमेरिका के लोग कहते हैं कि इंग्लैंड के मोमिनीन तो एक गांव में रहते हैं, गांव टाउन कस्बा छोटा चाहे, उनको क्या पता दुनिया क्या। जैसे आप हमारा मजाक उड़ाते हैं इंडिया पाकिस्तान वालों का, उस तरह से नॉर्थ अमेरिका के लोग यूरोप का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन छोड़िए इस बात को, वो कहते हैं कि यूरोप का मर्जी भी हमारे लिए काम नहीं आएगा। फिर तो हर गांव का अलग मर्जी होगा और फिर हर घर का अलग मर्जी होगा। खैर वो आप बात छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं चले हमने मान लिया ईस्ट और वेस्ट, मगर दो तरीके हैं इस डिमांड को पूरा करने के। एक तरीका ये है कि ठीक है मर्जियत का रास्ता खुला हुआ है, जाइए कोशिश करें, हौजा इल्मिया में जाके अपने स्टूडेंट्स को, ब्रिलियंट स्टूडेंट को भेज के मर्जे बनाइए, वो मर्जे बन जाएंगे, आएंगे और आके आपको सर्विस देंगे। और दूसरा तरीका ये है कि नहीं, हमारे यंगस्टर और यूथ इतना इंटरेस्टेड नहीं है रिलीजियस एजुकेशन की जहमत और सख्ती बर्दाश्त करने के लिए। बड़ा टफ होता है मर्जी बनना, इतना आसान नहीं है। इल्म के एतबार से भी कोशिश करना है, तकवे के एतबार से भी कोशिश करना। आप दुनिया की कोई भी डिग्री ले सकते हैं, शराब पीते हुए भी, हराम खाते हुए भी, म्यूजिक के माहौल में भी मर्जियत इस तरह नहीं मिलती है। आप नाइब इमाम बनने जा रहे हैं, आम मोमिनीन से ज्यादा तकवे के अंदर जिंदगी गुजारना पड़ेगी, तो ये टफ काम। अब ये नहीं हो सकता, तो हमने ये किया कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट मर्जी सबको मार दी, कहा कि इन्हें छोड़ो, इन्हें खत्म करो, फिर हमारा मर्जी सामने आएगा। आजकल हम ये कर रहे हैं भाई, यूरोप का मर्जी चाहिए, नॉर्थ अमेरिका का मर्जी चाहिए, मर्जियत में क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है? क्या नजफ अशरफ क्या कुम के अंदर यह कानून है कि इंग्लैंड से आने वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा, अमेरिका और कनाडा वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा? हर एक के लिए खुला हुआ है हौजा इल्मिया, जाइए अपने बेहतरीन स्टूडेंट्स को, उन्हें तो डॉक्टर बनना है, उन्हें तो फार्मेसिस्ट बनना, उन्हें तो प्रोफेशनल डिग्री लेना है, और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास एक मर्जी होना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, और वो ये कि इराक और ईरान के हौजे में नॉर्मली वहीं के मराजे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से गए कुछ भी रिलीजियस स्टूडेंट, वो वहां रहे, उन्होंने वो सारी तकलीफ बर्दाश्त की जो रिलीजियस एजुकेशन के लिए बर्दाश्त करना। एक छोटी सी बात कह दूं कि आम मोमिन 5 नमाजें पढ़ता है, जिसे मर्जी बनना है उसे कम अज कम 6 नमाजें इस तरह से पढ़ना है कि नमाज शब को भी वाजिब की नियत से नहीं लेकिन वाजिब के तरीके से पढ़ना। लेकिन ये एतराज नहीं आया पाकिस्तान से कि मर्जी खाली इराकी और ईरानी क्यों है, हमारा लोकल मर्जी होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए, भेजो अपने स्टूडेंट को। आज नजफ में 4 मर्जी हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक पाकिस्तान से, आयतुल्लाह सिस्तानी के बिल्कुल लेवल के जो 4 मर्जी हैं। ये तरीका होता है अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं इस बात में कि मर्जियत यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लिए अलग, और अगर मकसद सिर्फ यह है कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंट मराजे को खत्म करें, इससे कोई हमें इंटरेस्ट नहीं है कि हमारा मर्जी मिले कि ना मिले, हमें अपना मर्जी नहीं चाहिए, हमें आयतुल्लाह सिस्तानी से लेकर आका वहीद खुरासानी तक इस वक्त के जो मर्जी खैबत इमाम में इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं उनका खात्मा करना। एक्सक्यूज हम इस्तेमाल करते हैं अपने लोकल मर्जी, मकसद यह है कि जो मर्जियां हैं उनका खात्मा करें, तो यह प्रोपेगेंडा बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअल सोल्यूशन यह कि जाइए, मर्जियत के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दुनिया के किसी इलाके का भी स्टूडेंट चाहे तो वहां जाके मर्जी बन सकता है, जिसके मिसाल आयतुल्लाह लुज़्मा शेख इसहाक फैयाज और आयतुल्लाह लुज़्मा शेख हाफिज बशीर नजफी जैसे मराजे। मैदान खुला हुआ, मगर आप एक बात मैं और कह दूं और बाकी बातें इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो जियारत की मजलिस में आएंगी। कल तो आशूरे का दिन है, मैं सिवाय गम के बयान के और कुछ नहीं पढ़ूंगा, और वो ये एक हमारा प्रॉब्लम ये भी हुआ कि हमने कल्चर और रिलीजन को इतना मिला दिया कि बाज औकात प्रॉब्लम हमारा कल्चरल होता है और हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं रिलीजन पर। आजादारी के हवाले से तो नऊज बिल्ला आजकल ये बहुत कहा जाने लगा है कि ये कल्चरल एक चीज है, नहीं वो तो 100% रिलीजियस। लेकिन देखिए मर्जियत पर ज्यादा आजकल अंडर अटैक क्यों है मर्जियत, चांद के मसले, ईद की वजह से, और इसमें ईद का एक रिलीजियस एस्पेक्ट है एक कल्चरल है, हमने दोनों को मिक्स कर दिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता। रिलीजियस एस्पेक्ट सिर्फ इतना है कि आज मुझे रोजा नहीं रखना है और आपको रोजा रखना, बस ये है ईद, मुझे रोजा नहीं रखना, और एटलीस्ट हमारी फिका में नमाज ईद फुरादा भी पढ़ी जा सकती, बल्कि बाद मराजे तो कहते हैं कि फुरादा ही पढ़ना बेटर। दो ही चीजें तो है ना रिलीजन में ईद के लिए, एक रोजा नहीं रखना है, एक नमाज पढ़ लेना, वो भी वाजिब नहीं, नमाज ईद, आम नमाज की बात नहीं है, नमाज ईद। अब मैं ट्रैवलिंग करता हूं, ट्रैवलिंग में कई बार ऐसे मौके आते, किसी इलाके में गया, कंफर्म वहां पे रमजान है 22nd, मैंने रोजा नहीं रखा, कोई कयामत नहीं होती, कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता, घर वाले ये नहीं कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, घर में 2 आदमी मेहमान आए वो बगैर रोजे के, बाकी सब लोग रोजे से, या सब रोजा रखें या कोई ना रखे, कोई नहीं कहता, क्योंकि रिलीजियस मसला है। प्रॉब्लम आता है ईद के दिन नए कपड़े पहन के गले मिलके सेवैया खाने का, वो एक दिन होना चाहिए। ये हमारा कल्चरल मसला, उसके लिए रख लें एक दिन। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां पे कोई भी हॉलीडे अगर वीक के आखिर में आ रही है, मिड वीक में आ रही, सैटरडे संडे से मिला के मंडे उसकी डेट करके लॉन्ग वीकेंड देते। भाई ये हॉलीडे आई है मसलन इंडिपेंडेंस डे पे, वो तो थर्सडे को पड़ा, कहा कि नहीं थर्सडे को है लेकिन सेलिब्रेट हम करेंगे मंडे को। ईद का जो कल्चरल पहलू है ना, वो प्रॉब्लम इसके लिए होता। बाप ने नए कपड़े पहने, बेटे ने नहीं पहने, इसकी वजह से पहला एतराज फतवे पर, दूसरा एतराज मर्जियत पर, तीसरा एतराज ईस्ट और वेस्ट पर। कल्चर वाले पहलू को निकाल के जैसा आपका दिल चाहे अपने हिसाब से रखिए। भाई आज ही जो पोप की नई किताब छपी है जिसमें उसने साबित किया है, पोप ने, वैसे तो बहुत रिसर्च स्कॉलर है लेकिन अब तो पोप की बात आ गई कि 25 दिसंबर हजरत ईसा की डेट ऑफ बर्थ नहीं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि इसका कल्चरल पहलू आप 25 को मनाइए, चाहे इसका कोई ताल्लुक हजरत ईसा से ना हो। तो ये चांद का मसला है, इसके अंदर हमने कल्चर और रिलीजन को मिक्स कर दिया। प्रॉब्लम आता है हमारे कल्चरल फंक्शन में, हम उसकी जिम्मेदारी करार देते हैं फतवे और मर्जियत और रिलीजियस पहलू पर। इसे अलग कीजिए, सेपरेट कीजिए कम से कम ईद की सेवैया और ईद के रोजे को, तब जाके ये प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा। लेकिन ये सब मैं कहता रहूं, मुझे पता है कि इसके बावजूद ये प्रोपेगेंडा बढ़ता जाएगा, कम भी नहीं होगा, इसलिए कि आखिरी जमाने की कन्फर्म साइंस ऑफ जुहूर में ये शामिल। ओवरऑल तमाम क्वायस उलमा पर क्रिटिसिज्म, और स्पेशली जिसको इमाम ने अपना नायब बनाया और जो गैबत के अंदर एक तरह का डिफेंडर है, और जुहूर के मौके पे जो लोगों को बताएगा। अब ये जो अब मैं अपने सब्जेक्ट से भी कनेक्ट हो गया और कल रात की मजलिस से भी। कल रात की मजलिस क्या थी? इमाम के आने से पहले झूठे इमाम आएंगे, चाहे वो 12 हो, चाहे वो 40 हो, चाहे वो 70 हो, नंबर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, झूठे इमाम आएंगे। तो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, हमें कैसे पता चले कि इसमें सच्चा इमाम कौन है, इमाम बरहक जिसके नाम पे जान कुर्बान, और झूठा कौन है, कौन हमें बताने वाला? वो यही महाराजे कराम होंगे तो इमाम के आने से पहले इन्हीं को इतना डाउटफुल बना दो कि कौम इनकी जानिब इनसे कांटेक्ट करना या इनकी जानिब रुजू करना छोड़ दे, फिर अगर झूठा इमाम बना दिया। तो जो इमाम का फर्क हमें बताने वाला है, जब वही शक में पड़ गया तो झूठा इमाम बहुत जल्दी पॉपुलर बनाया जाएगा। थोड़ी सी बात अब मैं जियारत के मजलिस के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन ये जो कल मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि इमाम के आने से पहले झूठा इमाम आएगा, तो इस पर गौर करें कि हम कैसे पहचान सकेंगे सच्चा कौन है और झूठा कौन है। उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, हमें रिलाई करना पड़ेगा एक मर्जी की नॉलेज पर। पहले उसी को शक वाला बना दिया ताकि बाद वाली प्लानिंग आसानी से कामयाब। और ये ज्यादा ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होते ये दो खराबियों की वजह से, एक जब दिल में माल की मोहब्बत बहुत बढ़ जाती है, और एक जब वो लाइव माशरे में बहुत कॉमन हो जाता। ये सूरह जुमा की आखिरी आयत, व इजा रऔ तिजारतन औ लहवा इन फजू इलैहा, जब ये लोग तिजारत देखते हैं, मर्चेंडाइज, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन, दौड़ के वहां जाते हैं, वह तारकू का कायमा आए रसूल तुझे अकेला छोड़ देते, वह लहवा। अब ये अरबी लफ्ज है, डिफरेंट ट्रांसलेशन इसके मुझे नजर आए, ठीक है, जब लहव नजर आता है तो लोग रसूल को छोड़ के चले जाते हैं, कुरान विटनेस है लहव। एक ट्रांसलेशन में मैंने देखा लहव मींस स्पोर्ट्स, एक में देखा पास टाइम, एक में देखा अम्यूजमेंट। भाई ये सारी चीजें लाभो लाभ, आखिरी जमाने की निशानी यह है कि दो चीजें बहुत बढ़ जाएंगी, एक माल की मोहब्बत और एक स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट वाले एक्ट, پاس ٹائم والی چیزیں. کیا آج ایسا نہیں؟ کیا آپ کا بچہ 24 آورز میں سے 14 آورز وہ لیپ ٹاپ یا آئی فون یا آئی پیڈ پہ نہیں گزار رہا؟ لخمن فضو الہی. ابھی بات تو بہت لمبی ہوگی لیکن آیت کو آج کمپلیٹ کرنا. اور یہاں پہ رک کے ایک بہت ہی اہم روایت آپ کے سامنے پہلے کوٹ کروں تاکہ جو آدھی بات اب تک ہوئی. مجھے معلوم ہے کہ عاشورے کے بعد زیارت کی مجلس میں مومنین نہیں آ سکیں گے اور خاص طور پہ ورکنگ ڈے. تو جو بات اب تک ہے آج اسے کمپلیٹ کرنا ہے. اس آیت میں دو باتیں آئیں اور آیت کی تلاوت میں کیوں کر رہا ہوں؟ ان مومنین کے لیے جو آج صرف شب عاشور کی وجہ سے آئے. انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ صادق حسن کون ہے اور کیا پڑھ رہا ہے. ان کو ذرا سا اس کا ایک کنیکشن بتا دوں. آیت کا ترجمہ یہ اس لیے میں پڑھ رہا تھا کہ رسول خدا کے زمانے میں ان کو انوائٹ کر کے بلانے والے مدینے کے مسلمان. قرآن نے کہا کہ دو ان میں ایسے فالٹ یا خرابی یا شارٹ کمنگ تھی کہ رسول کو بلایا, رسول کے پیچھے نماز شروع کرتے ہیں اور رسول کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ترکو کا قائمہ, تجھے نماز کے قیام میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. ایک پیسے کی محبت اور ایک یہ پاس ٹائم, ایمیوزمنٹ, اسپورٹ, انٹرٹینمنٹ. اب یہ لفظ اسپورٹ سے میں ایگری نہیں کرتا لیکن کیا کروں, انگلش ٹرانسلیشن میں یہی لفظ مجھے نظر آیا اور میری انگلش کتنی ویک ہے کہ دو چیزیں تو اس 10 دن میں آپ کو یاد ہو گئی, مجھ میں کتنی بیماریاں ہیں اور میں اس کے لیے کیا دوا لے رہا ہوں, اور دوسرا یہ کہ انگلش میری بہت ویک ہے. تو یہ اسپورٹس ترجمہ قرآن کے ٹرانسلیشن میں لکھا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں. یہ دو چیزیں. اب آئیے پہلی چیز, مال. مال کے حوالے سے بات دو دن ہو گئی لیکن ایک بہت اہم حدیث, اور یہ وہ حدیث ہے جس کا ریفرنس میں نے پہلی مجلس میں دیا تھا, اور وہ یہ ہے کہ جب زمانے کے امام ظاہر ہوں گے کربلا کے جہاد کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, کل عاشورے کا دن, سارا دن آپ امام زمانہ کو یاد کریں گے کہ مولا کربلا کی وجہ سے ظاہر ہو جائیے, اور ہمارے عاشورہ کے اندر بھی یہ دعا شامل. تو جب زمانے کے امام ظاہر ہوں گے, روایت یہ ہے کہ امام کی جو فرسٹ آرمی ہوگی وہاں سے لے کر جو امام کی فائنل آرمی ہے وہاں تک, فرام 313 ٹو 10,000. فرسٹ آرمی ہے 313 اور فائنل آرمی بنے گی 10,000. پھر امام اپنا جہاد اسٹارٹ کریں گے. امام مکے سے اپنا جہاد اسٹارٹ کریں گے اور مدینے جائیں گے. کربلا والا حسین مدینے سے مکے آیا تھا اور پھر اپنا جہاد شروع کیا تھا. امام زمانہ کا جہاد مکے سے مدینہ, لیکن جب مکے میں امام کی آرمی جمع ہو جائے گی, چاہے وہ فرسٹ کال والے 313 ہوں یا بعد میں 10,000, بعد میں سب سے امام بیعت لیں گے. اور بیعت کا مطلب کیا ہے کہ امام کہیں گے تم مجھ سے 25 باتوں کا وعدہ کرو پھر میں اپنا جہاد شروع کروں گا. یبایعونہ, امام اپنی آرمی سے بیعت لیں گے کہ اگر میرے ساتھ مل کے جہاد کرنا. آج کی رات شب عاشور آقا حسین نے چراغ گل کر کے اپنی آرمی سے بیعت لی. امام زمانہ دن کی روشنی میں خانہ خدا کے صحن میں مقام ابراہیم کی ایکچوئل جگہ پہ بیٹھ کر 313 سے بیعت لیں گے کہ مجھ سے بیعت کرو تم میری آرمی کو جوائن کر رہے ہو. اگر 25 کنڈیشنز کو پورا کرتے ہو تب میری آرمی میں آؤ, اور دین آئی ول اسٹارٹ مائی جہاد. یہ حدیث کا جملہ کہ پہلے 25 باتوں کا وعدہ کرو پھر میں اپنا جہاد شروع کروں گا. اور وہ جو 25 باتیں ہیں 25, ان میں سے 12 کا تعلق اسی سے جو پہلا پوائنٹ گزرا, یعنی دل سے پیسے اور مال کی محبت کو نکالنا. یہاں رک کر وہ 25 میں سے 12 باتیں آج مجھے اس لیے پڑھ دینا کہ اب میرے ٹاپک کا پہلا حصہ آج کمپلیٹ ہو رہا ہے, سورہ جمعہ کی آیت. تو 12 چیزوں کا تعلق سورہ جمعہ کی آیت کے پہلے لفظ سے, ایزا رہا تجارہ, جب تجارت, بزنس, ٹرانزیکشن, مرچنٹائز دیکھتے ہیں تو رسول کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. امام اسی لیے 12 پہلی باتیں یہ بیان کریں گے. لیکن دو چھوٹی باتیں اور سن لیجئے, پھر یہ روایت کنٹینیو کی جائے. پہلی بات, یہ روایت کا سورس کیا ہے؟ यूजुअली मैं अपनी मजलिस में इतना फास्ट जा रहा होता हूं कि रेफरेंस देने का मौका नहीं होता, मगर चूंकि रिवायत बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मेजोरिटी ऑफ मोमिनीन ने इसे पहली बार सुना होता, तो मैं बहुत शॉर्ट में, आपका टाइम वेस्ट ना हो, मेरा टाइम वेस्ट ना हो, सोर्स तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट ऑथेंटिक कह लीजिए हमारे आज के मराजे में से एक नाम है आयतुल्ला गुलपाए गानी का। वो जो एक मशहूर आगा गुलपाए गानी थे, उनके दामाद आयतुल्ला साफी गुलपाए गानी, उन्होंने जमाने के इमाम के हालात पर एक बुक लिखी है मुंतखिबुल असर, जिसका पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ, ये ओरिजिनल अरबिक, फिर उर्दू ट्रांसलेशन हुआ, फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ मुंतखिबुल असर। नॉर्मली या यूजुअली मराजे इस टॉपिक पर किताब नहीं लिखते, लेकिन आयतुल्लाह अल-उज़्मा आगा साफी गुलपाएगानी वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड एंड कन्फर्म मराजे ऑफ दिस टाइम, और ये उनकी किताब है, उसमें ये पूरी हदीस है। दो मिनट मैंने सोर्स, और दूसरी बात ये बता दी कि ये हदीस के इमाम जमाना अपनी फौज से 25 बातों का वादा लेंगे, उससे कमिटमेंट करो, मेरे हाथ पर बयात करो 25 चीजों। ये किस इमाम से ये हदीस आई, ये किसी इमाम की हदीस है कि किसी आलिम का अपना अपनी कोई रिसर्च? अजीब बात ये कि हदीस है आखिरी इमाम के बारे में, और ये हदीस कोट की है हमारे सामने पहले इमाम ने, ये इमाम अली की हदीस है, जो इमाम अली ने ये कहा कि खाली सुनो नहीं, इसे रिटर्न में लिख के अपने घरों में रखो। चाहे शायद ये मैसेज दे रहे हूं कि ये हदीस तुम्हारे घर में हर वक्त प्रिजर्व रहना चाहिए, ताकि अगर तुम इमाम जमाना तक न पहुंचो तो तुम्हारी औलाद जाएगी, औलाद की औलाद जाएगी, तुम्हारे घर में रिटर्न में हर वक्त ये एविडेंस होना चाहिए कि इमाम आएंगे तो मुझे किन चीजों का विटनेस करना, ताकि अपने आप को भी वैसा बनाओ और अपनी औलाद की भी ऐसी तरबियत करो। बहुत कम हदीसें ऐसी हैं जिसमें इमाम अली ने यह जुमला कहा हो कि इसे रिटर्न में लिख के अपने घर में रखो। ये हदीस कहा कि जब मेरा बेटा मक्के में जाहिर होगा और पहली आर्मी उसको ज्वाइन करेगी, तो 25 चीजें, उनमें से 12 का ताल्लुक मेरे अब तक के टॉपिक से है जो मैं कवर कर चुका हूं, और लास्ट 13 वो इंशाल्लाह जियारत की मजलिस में आएंगी 12 चीजें। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, मैंने खाली इन 12 चीजों पर पूरा अशरा पढ़ा और कहा कि मैं 15 मिनट में इसे कंप्लीट करना चाहता हूं और फिर आज के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कहा जो बायऊना जमाने का इमाम अपनी फौज से बायत लेगा अल्लाह यूसरेफू। अब ये हर एक चीज को समझाने का या एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं, आप खुद ही देखते जाइए कि इसका ताल्लुक क्या माल और दौलत से नहीं। कहा पहली बात तो यह कि खबरदार कभी फजूल खर्ची और इसराफ ना करना। बहुत बड़ा आज का प्रॉब्लम ये कि क्रेडिट क्रंच इतना बड़ा नहीं है जितना हमने उसको बना दिया है। उर्दू की एक कहावत है, चादर से ज्यादा पैर फैला देना। हमने अपने आप को ओवर बजटिंग में लेके गए हैं, जितनी हमारी आमदनी थी अगर अपने आप को उसमें लिमिटेड रखते तो जरूरत ही नहीं थी माले हराम की, जरूरत ही नहीं थी फ्रॉड की, जरूरत ही नहीं थी चीटिंग की। कुछ कुछ लोग होंगे ऐसे जॉबलेस टाइप के, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये, तो आगाज इस 60 बयत का यहां से अल्लाह यूसरेफू, खबरदार इसराफ न करना। अगर दो बेडरूम के मकान से तुम्हारा काम चल सकता है तो क्या जरूरत है कि इतने बड़े बड़े मकान लो के बाद में उसका मॉर्गेज देना मुश्किल हो जाए और आके कहो मौलाना बरकत के लिए कोई दुआ बताई। देखिए मैंने कहा एक एक चीज पे एक मजलिस हो सकती है, लेकिन चूंकि ये 12 चीजों में कई बार इमाम ने इसी पॉइंट को रिपीट किया। आजकल हमारे यहां ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक एडवाइस जारी करती है टाइम टू टाइम कि कैसे क्रेडिट क्रंच से बचा जाए, उसमें जुमला यह होता कि भाई जितनी आपकी आमदनी अपने एक्सपेंडिचर को उसके अंदर रखी। और खास तौर पे देखिए एक बात कही जाती है जो हम पाकिस्तान इंडिया में अपने बच्चों से कहते थे पहले कि क्रेडिट कार्ड को तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें या कम से कम इस्तेमाल करें। सारा प्रॉब्लम यही हो जाता है जब आप लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। अब आपको सूरह वाकया चाहिए, अब आपको रोजी के लिए कोई दुआ चाहिए, अब आपको रोजी के लिए कोई अमल चाहिए। तो अब मैंने कहा ना कि इस पर मैं अशरा पढ़ चुका हूं, तो इतना टाइम नहीं है। एक मैंने शुरू में एक ऐसा फार्मूला बता दिया कि पूरी 12 में से 9 चीजों पे फार्मूला उतरेगा। अल्लाह युसरेफू, माल की मोहब्बत निकलेगी यहां से कि फजूल खर्ची ना करो। जब बजट तुम्हारा कम होगा, जब कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। अच्छा नहीं, मैं और शॉर्ट करता हूं, वला युसरेफू, खबरदार किसी के हक में डाका ना डालना, किसी का माल चोरी ना करना। 2-3 दिन ये बात हो चुकी, भाई का हक, बहन का हक, गलत क्लेम करके गवर्नमेंट से बेनिफिट लेना, सारी चीजें चोरी ना करो। ये मौला का जुमला था ना अकील से,